हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 3 कर्मयोग, श्लोक क्रमांक 38। धूमेना व्रीहते वहनिर्यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस तथा तेनिदमावृतम्। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी तरह जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। श्रील बलदेव विद्याभूषण की कमेंट्री को थोड़ा हम देखेंगे और फिर प्रभुपाद जी के तात्पर्य को देखेंगे। तो किस प्रकार से जीवात्मा का, जो कि सच्चिदानंदमय है, चिद मतलब ज्ञानमय है, उसके ज्ञान को ये काम भोग की वासना ढक लेती है, इसके बारे में भगवान उदाहरण रूप में बता रहे हैं। धुएं का, धूल का और भ्रूण का जो गर्भ में होता है, माँ के गर्भ में होता है, उसके उदाहरण दिए जा रहा है काम के प्रभाव को दर्शाने के लिए। काम का प्रभाव थोड़ा कम हो सकता है, मध्यम हो सकता है, बहुत अधिक हो सकता है, तो उसके बारे में समझाया जा रहा है। जो अग्नि धुएं से ढकी रहती है वो बहुत जगमग मतलब नहीं होती है, बहुत रोशनी नहीं देती है, फिर भी कुछ हद तक ताप दे सकती है। तो ये जो स्थिति है, ये इसमें काम कम आवृत किया है। जिस दर्पण के ऊपर धूल लगी रहती है वो हमारी जो प्रतिबिंब है उसको दिखाने में समर्थ नहीं होता है, क्योंकि जो शुद्ध सतह है वो दर्पण की ढक जाती है धूल के कारण। और जो माँ के गर्भ में भ्रूण होता है, बच्चा होता है, वो ना तो अपने हाथ पांव हिला सकता है और ना ही उसको देखा जा सकता है प्रत्यक्ष रूप से। तो अगर ज्ञान किंचित कम मात्रा में काम के द्वारा आवृत है तो सत्य को थोड़ा थोड़ा समझ सकता है, अगर थोड़ा और अधिक आवृत किया है तो सत्य को और कम समझेगा, और अगर पूरी तरह से काम से आवृत है तो सत्य को, ज्ञान को समझ नहीं पाएगा। तो एक भक्त प्रश्न कर रहे थे कि सब लोग भक्ति क्यों नहीं स्वीकार करते हैं, तो उसका कारण यही है कि उनकी चेतना काम के द्वारा कितना आवृत है। वास्तविक रूप से हम सभी लोग अनुभव कर रहे हैं कि हमारा शरीर परिवर्तित हो रहा है और हम परिवर्तित नहीं होते, लेकिन इस प्रकार का सूक्ष्म ज्ञान वही व्यक्ति समझ सकता है जो इस काम की भावना से कुछ अनुपात में तो कम से कम निवृत्त हुआ हो। इसीलिए हरे कृष्ण मंत्र इसमें हमको बहुत मदद करता है, और भक्त बार बार हमको बोलते भी हैं कि आपको आज समझ में नहीं आ रहा है, कृपया हरे कृष्ण मंत्र जप करें तो आपको समझ में आने लग जाएगा, और हमको समझ में आने भी लगता है। और कारण क्या है? हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा हमारे चित्त का मार्जन होता है, कि काम जो है वो हमारे हृदय से साफ हो जाती है। तात्पर्य को देखिए। जीवात्मा के आवरण की 3 कोटियां हैं जिनसे उसकी शुद्ध चेतना धूमिल होती है, इसको हमने समझा दिया। ये आवरण काम ही है जो विभिन्न स्वरूपों में होता है, यथा अग्नि में धुआं, दर्पण पर धूल तथा भ्रूण पर गर्भाशय। जब काम की उपमा ध्रुव से दी जाती है, यानी धुएं से दी जाती है, तो यह समझना चाहिए कि जीवित स्फुलिंग की अग्नि कुछ कुछ अनुभव गम्य है। दूसरे शब्दों में, जब जीवात्मा अपनी कृष्ण भावनामृत को कुछ कुछ प्रकट करता है तो उसकी उपमा धुएं से आवृत अग्नि से दी जा सकती है। यद्यपि जहां कहीं धुआं होता है वहां अग्नि का होना अनिवार्य है, किंतु प्रारंभिक अवस्था में अग्नि की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति नहीं होती। इसको मैंने समझा दिया था। आप देख सकते हैं प्रभुपाद जी कितना सट करके श्रील बलदेव विद्याभूषण के तात्पर्य को समझा रहे हैं, थोड़ा और स्पष्ट करके समझा रहे ताकि हम लोग समझ सके। यह अवस्था कृष्ण भावनामृत के शुभारंभ जैसी है, मतलब व्यक्ति पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित हुआ नहीं है, लेकिन भक्तों के संग में आकर के वो अब समझने लगा है कि वो शरीर नहीं है, वो आत्मा है, और भक्ति के साधन में लग गया है। जो लोग, तो इससे हम लोगों को सीखना चाहिए, जो लोग भगवान की भक्ति में लगे हैं वो लोग बहुत भाग्यवान हैं कि कोटि कोटि जन्मों से जो हमारा अज्ञान काम के द्वारा हमारा जो ज्ञान था वो ढका हुआ था, अब मौका है कि हम उसको अनावृत कर सकें। और ये हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा होता है, भक्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है। दर्पण पर धूल का उदाहरण मन रूपी दर्पण को अनेकानेक आध्यात्मिक विधियों से स्वच्छ करने की प्रक्रिया के समान है। कहने का अर्थ है, जैसे हम दर्पण गंदा होता है तो साफ करने का तरीका होते हैं, अलग अलग केमिकल लगाते हैं, कपड़े से पोंछते हैं, उसी प्रकार से भक्ति के द्वारा या फिर अनेक अनेक आध्यात्मिक विधियों के द्वारा, कर्म योग, ज्ञान योग इत्यादि के द्वारा अपने हृदय को साफ करना है, ये उसकी उद्देश्य है। इसकी सर्वश्रेष्ठ विधि है भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन, जो कि चैतन्य महाप्रभु ने दिया। महाप्रभु से सार्वभौम भट्टाचार्य, जो कि महान शास्त्रज्ञ थे, उन्हें पूछा कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है भक्ति में, तो उन्होंने बोला भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करना। और इसीलिए प्रभुपाद जी ने बोला कि नाम को हमें सुनने का प्रयास करना चाहिए। जब हम नाम सुनते हैं तो नाम हमारे हृदय में जा करके हमारे मन को, हमारे चित्त को शुद्ध कर देता है। गर्भाशय द्वारा आवृत भ्रूण का दृष्टांत असहाय अवस्था से दिया गया है, क्योंकि गर्भ स्थित शिशु इधर उधर हिलने के लिए भी स्वतंत्र नहीं रहता। जीवन की यह अवस्था वृक्षों के समान है। वृक्ष भी जीवात्माएं हैं, किंतु उनमें काम की प्रबलता को देखते हुए उन्हें ऐसी योनि मिली है कि वे प्राय चेतना शून्य होते हैं। धूमिल दर्पण पशु पक्षियों के समान है और धूम्र से आवृत अग्नि मनुष्य के समान है। मनुष्य के रूप में जीवात्मा में थोड़ा बहुत कृष्ण भावनामृत का उदय होता है, और यदि वे और प्रगति करता है तो आध्यात्मिक जीवन की अग्नि मनुष्य जीवन में प्रज्वलित हो सकती है। तो ये मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा लाभ है। लोग बार बार भक्तों को निरुत्साहित करते हैं, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे ब्रह्मचारी, कि ये हरे कृष्णा करने के लिए बस जीवन मिला है। तो आप उनको बोल सकते हैं, हाँ, हरे कृष्णा करने के लिए ही मिला है और किसी चीज़ के लिए नहीं मिला है। बाकी जो भी कुछ हम यहाँ पे कर रहे हैं वो वस्तुतः टाइम वेस्ट है, वो स्वीकार करें या ना करें, लेकिन एक्चुअली टाइम वेस्ट है, क्योंकि ना तो हमारा इस जगत में कुछ है और ना कुछ हम साथ में लेके जा सकते हैं। केवल हमको सुविधा दी गई है ताकि हम लोग अधिक से अधिक भगवान का नाम जप कर सकें, भगवान की पुस्तकों को पढ़ें, भगवान की भक्ति करें, अपने हृदय को शुद्ध करें। यदि अग्नि के धुएं को ठीक से नियंत्रित किया जाए तो अग्नि जल सकती है, अतः यह मनुष्य जीवन जीवात्मा के लिए ऐसा सुअवसर है जिससे वह संसार के बंधन से छूट सकता है। अच्छा उदाहरण है, जब अग्नि में धुआं होता है, थोड़ा फूंक मारी जाए तो जो राख है वो हट जाती है और अग्नि फिर से प्रज्वलित हो जाती है। सबका अनुभव है इस प्रकार का, स्पेशली होली में आपने ऐसा किया होगा। तो उसी प्रकार से जो हमारे हृदय में गंदगियाँ हैं, अगर भक्ति करते हैं तो भक्ति के प्रभाव से वो राख हट जाती है और फिर हमारी चेतना प्रज्वलित होकर के प्रकट होती है और हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने लग जाते हैं। अतः यह मनुष्य जीवन जीवात्मा के लिए ऐसा सुअवसर है जिससे वह संसार के बंधन से छूट सकता है। मनुष्य जीवन में काम रूपी शत्रु को योग दर्शन में कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन द्वारा जीता जा सकता है। ये लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कल इस बारे में मैंने कोई नहीं बताया था। काम जो है वो हमको इम्पल्सिवली कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। इम्पल्स मतलब क्या करना आपको अच्छा लगता है, ये करना अच्छा लगता कर लो, आगे क्या इसका होगा परिणाम, क्या ये मेरे लिए अच्छा है बुरा है, इसके बारे में विचार नहीं करते हैं यदि हम काम के द्वारा कुछ कार्य करते हैं। तो आप देखिएगा कि अपने जीवन में सबसे इम्पॉर्टेंट है भक्त पिछले भक्तों के लिए कि हम अगर शास्त्र के को नियमित रूप से पढ़ें तो हमको मालूम चलेगा कि कौन सा कार्य करने का प्रभाव भविष्य में क्या होता है। तो फिर हम धीरे धीरे करके, भले शुरुआत में ना कर पाए, धीरे धीरे करके जो हमारे काम के द्वारा प्रवृत्त होने की भावना है उसकी बजाय हम अब शास्त्र के द्वारा नियंत्रित होने का अभ्यास सीख सकेंगे। जैसे सुबह उठना है, जब करना है, तो भले ही आपको लगे कि आज फायदा हो नहीं रहा, लेकिन शास्त्र के बाद कथन सुनकर के हम समझेंगे कि आगे जाके मेरा फायदा होगा। और खैर, इसका फायदा आप जीवन में प्रत्यक्ष रूप से भी अनुभव कर सकते हो, मन शांत होता है इत्यादि। तो इस प्रकार से व्यक्ति भोगने की इच्छा को दमन कर सकता है, इतना असंभव नहीं है। ठीक है, एक श्लोक और देखेंगे। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्परेण नलेन च। इस प्रकार ज्ञानमय जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। ये उदाहरण बहुत बार आपने समझा होगा, सुना भी होगा कि काम एक अग्नि के समान है, और जिस प्रकार से अग्नि में तेल देने से अग्नि बुझती नहीं है बल्कि और बढ़ जाती है, उसी प्रकार से काम की इच्छाओं को व्यक्ति जितना संतुष्ट करने का प्रयास करेगा उतना ही वो और बढ़ जाएंगे हृदय में, और उतना ही तीव्रता से हमारे हृदय को जलाएंगी। तो तात्पर्य देखेंगे, मनुस्मृति में कहा गया है कि कितना भी विषय भोग क्यों ना किया जाए, काम की तृप्ति नहीं होती। जिस प्रकार की निरंतर ईंधन डालने से अग्नि कभी नहीं बुझती। भौतिक जगत में समस्त कार्य कलापों का केंद्र बिंदु मैथुन या काम सुख है, अतः इस जगत को मैथुनागार या विषय जीवन की हथकड़ियां कहा गया है। एक सामान्य बंदी गृह में अपराधियों को छड़ों के भीतर रखा जाता है, और इसी प्रकार जो अपराधी भगवान के नियमों की अवज्ञा करते हैं वे मैथुन जीवन द्वारा बंदी बना जाते हैं। इंद्रिय तृप्ति के आधार पर भौतिक सभ्यता की प्रगति का अर्थ है इस जगत में जीवात्मा की बंधन अवधि को बढ़ाना। अतः यह काम अज्ञान का प्रतीक है जिसके द्वारा जीवात्मा को इस संसार में रखा जाता है। इंद्रिय तृप्ति का भोग करते करते समय हो सकता है कि कुछ प्रसन्नता की अनुभूति हो, किंतु यह प्रसन्नता की अनुभूति ही इंद्रिय भोक्ता का चरम शत्रु है। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, बहुत सुंदर प्रवाद ने पर लिखा है। पहली बात ये कि व्यक्ति सोचे कि काम सुख मैं अगर प्राप्त करता रहूं और उसको ईंधन देता रहूं, यानी और इस प्रकार से अपनी इंद्रियों को उसमें नियोजित करता रहूं, तो इससे एक दिन अपने आप वो शांत हो जाएगा, तो ये धारणा बिल्कुल गलत है। क्योंकि भगवान खुद बोल रहे हैं यहाँ पे, दुष्पूर्ण नले नचा, अनल मतलब होता है आग, और ये अग्नि की तरह है, अग्नि में जितना तेल दिया जाएगा उतना ही बढ़ेगी। दूसरा इंटरेस्टिंग है कि इस जगत को मैथुन नगार बोला जाता है। हर जीव किसी भी योनि में हो, चाहे वो छिपकली से हो, चाहे वो चूहा हो, चाहे वो कुत्ता हो, बंदर हो, बिल्ली हो, कुछ भी हो या इंसान हो, उसको उस योनि की विपरीत लिंग जो है उसके प्रति आकर्षण होता है। जैसे हमें सुवर्णी बहुत खराब लगेगी, लेकिन एक सुअर को सुवर्णी माया के प्रभाव से अप्सरा से भी अधिक सुंदर दिखाई पड़ेगी। ये माया का अद्भुत प्रभाव है। तो यहाँ प्रभुपाद समझा रहे हैं कि जब तक व्यक्ति इस काम वासना से आसक्त है तब तक उसके लिए भगवत धाम जाना प्रायः संभव है, क्योंकि जगत को भोगने की इच्छा है। इस बात को भगवान गीता 15वें अध्याय में बोलते हैं, निर्माण मोह जित संग दोषा अध्यात्म नित्य विनिवृत्त कामा। जो व्यक्ति बहुत सारे गुण हैं जो व्यक्ति के भगवत धाम जाने के योग्य बनाते हैं, और इसमें मुख्य गुण है विनिवृत्त कामा, काम से मुक्त होना, भोग भोगने की इच्छा से मुक्त होना। इसीलिए काम को, स्पेशली स्त्री पुरुष के आकर्षण को नियमित करने का प्रावधान मनुष्य जीवन में है। 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, केवल 25 साल तक नियमित रूप से गृहस्थ जीवन जीना होता है, यानी कि केवल संतान उत्पत्ति के लिए स्त्री पुरुष का संग होना चाहिए। क्योंकि संस्कार इतना तगड़ा है, आसक्ति इतनी तगड़ी बन जाती है कि व्यक्ति फिर वो इस जगत में बंध जाता है। इसीलिए 100 साल के जीवन में केवल 25 साल इंद्र तृप्ति के लिए रखा गया, फिर वानप्रस्थ जीवन में पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन, संन्यास में तो खैर कोई मतलब ही नहीं है भोग का। तो इस प्रकार से 75% जीवन शास्त्र के अनुसार इंद्रियों से निवृत्त रहकर करने का होता है, और जब इस प्रकार से व्यक्ति जीवन जीता है तो भगवान के धाम जाने का योग्य बन सकता है। लेकिन आजकल के समाज में इस प्रकार की बातें करने वाले व्यक्ति को तो पागल बोला जाएगा। क्यों पागल बोला जाएगा? क्योंकि लास्ट लाइन आप देख सकते हैं, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति से इस समय थोड़ी सुख प्राप्त होता है, इसे कहते हैं प्रेयस, यानी थोड़ा सुख अभी मिल रहा है, बाद में दुख मिलेगा नहीं मिलेगा उससे लोगों को मतलब नहीं। तो श्रेयस के बारे में लोग नहीं जानना चाहते हैं, और जानेंगे भी तो भी उसको पालन नहीं करना चाहते हैं। तो अब यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात है कि जो सुख मिल रहा है काम सुख में, उससे मेरा नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि वो जो संस्कार बन गया मन में, वो और आगे हमको जन्म लेने के लिए बाध्य करेगा। जितना व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति में लगेगा, भोग में लगेगा, उतना ही ये इच्छाएं हृदय में बलवती हो जाएंगी कि भोग करना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। हाय ये मिल जाता, हाय वो मिल जाता, ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता, ये इच्छा पूर्ण हो जाती तो अच्छा होता। तो इस प्रकार की इच्छाओं के द्वारा व्यक्ति बंध जाता है जगत में। इसी कारण से व्यक्ति को काम इच्छा पे नियंत्रण करने का प्रयास करना चाहिए। और एक और इंटरेस्टिंग बात जो प्रभुपाद ने बताई है कि सामान्य जेलों में लोगों की हाथ में कड़ी बंदी होती है ताकि वो भागे नहीं, लेकिन इस जगत में किसी को लगता नहीं है कि वो बंधा हुआ है, लेकिन जो बंधन है उसके चित्त में है। पुंसाम स्त्रिय मैथुनी भावम एतम तयोर मृत हृदय ग्रंथि माहु अहो क्षेत्र सुताप्त वित्तर जनस मोहो ये ममेति। स्त्री पुरुष के संग से व्यक्ति के हृदय में ग्रंथि बन जाती है कि मैं ये शरीर हूँ, ये पत्नी मेरी है, ये पति मेरा है, ये बच्चे मेरे हैं, कोई किसी का कुछ नहीं है, लेकिन इस प्रकार से भावना बन जाती है। और फिर व्यक्ति बच्चों के लिए, स्त्री के लिए, पुरुष सबके लिए बहुत बहुत कार्य करने लगता है। अगर वस्तुतः लोग कोई शादी नहीं कर रहे तो उसको उतना मेहनत करने की इच्छा भी नहीं होगी, दो व्यक्ति की रोटी मिल रही है भगवान का भजन करेगा। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि भगवान के भजन में ये बहुत बड़ा बाधा है। इसीलिए पति और पत्नी दोनों को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में अपने चित्त को लगाना चाहिए, ना कि भोग में, और एक्चुअली हर जीवात्मा को लगाने का प्रयास करना चाहिए। अगर हम काम वासना से मुक्त हो जाएं तो बड़ी आसानी से भगवान भक्ति में आगे हम प्रगति कर सकते हैं, लेकिन होंगे कैसे? भक्ति के द्वारा। तदा रजस्तमो भाव काम लोभ दयश्चय चेते रेत्र नाविद्यम सितम सत्वे प्रसिद्धति। जब हम श्रीमद् भागवतम को सुनते हैं, भगवद गीता को सुनते हैं, नाम उच्चारण करते हैं, सुनते हैं, भक्तों का संग करते हैं, भगवान का प्रसाद खाते हैं, तो धीरे धीरे करके ये काम वासना हमारे हृदय से अपने आप जड़ से खत्म हो जाती है। लेकिन हमें प्रयास ये करना है कि इसको अपने चित्त में आगे बढ़ने ना दें। तो अब आगे भगवान बता रहे हैं कि ये शत्रु किस प्रकार से हमारे इंद्रियों में को पकड़ा हुआ है, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। हरे कृष्णा।